राधिका, आपको कोई गलतफहमी हुई है। रिश्ते के लिए इनकार आपकी ओर से हुआ था। माधव के शब्द राधिका के कानों में पड़े और उसने चौंक कर बेयकीनी से उसे देखा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? रिश्ते के लिए इनकार आपकी ओर से किया गया था। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने तो आपकी तस्वीर देखते ही रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था। मेरे घर में सब हमारे रिश्ते के लिए तैयार थे। आपके यहाँ से रिश्ते के लिए इनकार किया गया था क्योंकि मैं आपके काबिल नहीं था। माधव ने जैसे किसी गहरे रहस्य का पर्दा उठाया था। उसने राधिका की बात पर ऐतराज़ जताते हुए अपनी बात उसके सामने रखी, पर राधिका उस पर विश्वास नहीं कर सके। ये नामुमकिन है। मेरे माँ बाप उस रिश्ते के लिए तैयार थे। अगर उन्हें आप मेरे काबिल नहीं लगते या उस रिश्ते से कोई भी परेशानी होती तो वो बात इतने आगे बढ़ने ही नहीं देते। मुझे अच्छे से याद है, मुझे देखकर जाने के बाद आपके तरफ से ही इनकार किया गया था क्योंकि मैं आपके लायक नहीं थी। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे, पर उनमें से कौन सही था और कौन गलत ये कहना बेहद मुश्किल था। इस बहस के बावजूद वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। पल भर के लिए उनकी खामोश निगाहें लाचारी से एक दूसरे को तकती रहीं। मन इस ख्याल में उलझा कि आखिर किसकी बात सच है और कौन गलतफहमी का शिकार हुआ है। फिर राधिका के मन में अचानक कुछ आया और उसके चेहरे पर गंभीर भाव भर आए। मुझे नहीं पता कि जो आपने कहा वो सच है या जो मुझे कहा गया वो, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। जो भी था वो पास्ट में था, जिसे पीछे छोड़कर हम दोनों ही अब अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो पास्ट को पास्ट में ही रहने देते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आपको भी मुझसे कोई शिकवा हो तो उसे दिल से निकाल दीजिए। जो होना था हो गया। बीती बातों को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर होगा कि यहाँ से अपने रास्तों को अलग अलग कर लें, दोबारा कभी एक दूसरे से न टकराएं, क्योंकि हमारी मंजिलें अलग हैं और हम एक दूसरे से जितना दूर रहेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। वैसे भी अब आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपनी पत्नी पर ध्यान देना चाहिए, मुझ पर नहीं। राधिका ने तो जैसे उसे अपनी ज़िंदगी से निकालकर फेंकने का इरादा कर लिया था। माधव पल भर हतप्रभ सा उसे तकता ही रहा, फिर उसने ठंडी आह भरी और उठकर खड़ा हो गया। ठीक कहा आपने, जो बीत गया अब उसे याद करने से कोई फ़ायदा नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है कि किसकी ओर से रिश्ते के लिए इनकार हुआ, नतीजा तो वही निकला जो निकलना था। दोनों ही स्थिति में हमारा रिश्ता जुड़ना मुमकिन नहीं था और हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा। जो होना था हो गया, उसे अब मैं बदल तो नहीं सकता, पर जाने से पहले इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने उस रिश्ते के लिए इनकार नहीं किया था, मैंने आपको नहीं ठुकराया था। तो हो सके तो अपने मन में मेरे लिए कोई नाराज़गी मत रखिएगा। मैं समझ सकता हूँ कि अपने अतीत को फेस करना आसान नहीं होता। जाने अनजाने में मैंने आपकी भावनाओं को आहत किया, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और आज आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब मेरे कारण आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आप चाहती हैं कि हम दोबारा कभी ना मिलें, मैं आपसे दूर रहूं, तो यही होगा। वैसे भी मेरा आपकी ज़िंदगी में दखल देने का, आपके लिए मुश्किलें बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। माधव ने अपनी बात कही और बेबसी भरी मुस्कान लबों पर सजाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गया। राधिका ने उसकी बात सुनी तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। कुछ शर्मिंदगी भी हुई कि उसने इतना कुछ सुना दिया, फिर भी वो इतने अदब से पेश आ रहा है। दूर जाने वाली बात सुनकर उसके बेचैन दिल की धड़कनें व्याकुलता से भर उठीं। राधिका ने अपनी आंखों को बेबसी से मसला और लबों को दांतों तले दबा लिया। अपने दिल को मजबूत करने लगी ताकि अपने इस फैसले पर टिकी रह सके, कहीं कमजोर न पड़ जाए। राधिका ने दरवाज़ा खोला और माधव बाहर जाने ही लगा था कि सामने आ खड़े हुए लोगों को देखकर उसके आगे बढ़ते कदम रुक गए। पापा, राधिका के मुंह से हैरानी से ये शब्द निकले और चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। आशुतोष जी पाक से लौट आए थे, अर्पिता भी उनके साथ थी और अपने घर से निकलते इस शख्स को देखकर वे कुछ हैरान भी थे, साथ ही मन में कई सवालों ने भी जन्म लिया था। राधु बेटा, ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रहे हैं? आशुतोष जी का सवाल सुनकर राधिका की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, चेहरे पर घबराहट के भाव उमड़ आए और पल भर को वो समझ न सकी कि आखिर उनके इस सवाल का क्या जवाब दे और माधव का उनसे परिचय कैसे करवाए। पर जल्दी ही उसने खुद को संभाला और अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, पापा, ये अंजलि के पति के दोस्त हैं। उस दिन मेरी स्कूटी खराब हो गई थी तो इन्होंने ही मदद की थी, किसी काम से आए थे घर। राधिका का जवाब सुनकर माधव की आश्चर्य भरी निगाहें उसकी ओर घूम गई। यही परिचय करवाने को मिला था आपको? दिल ने शिकायत की थी। राधिका की निगाहें भी उसकी ओर मुड़ी और जैसे वो उन स्याह आंखों में झलकते सवाल को समझ गई, मेरा आपसे ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं जिसके जरिए आपका परिचय करवा सकूं, और जो रिश्ता जुड़ने वाला था पर जुड़ने से पहले टूट गया उसे सामने लाना मुझे ठीक नहीं लगा। वैसे भी अब यही पहचान है आपकी मेरे लिए, इसी तरह से हमारी दोबारा मुलाकात हुई है। दिल से किए सवाल का जवाब भी दिल ने ही दिया था। माधव के चेहरे पर अजीब सी उदासी छा गई थी। अर्पिता मैडम अपनी चील सी तेज निगाहों से माधव को देखे जा रही थी। उसके दिमाग के घोड़े तेजी से दौड़ रहे थे और माथे पर सिलवटें डाले वो माधव को पहचानने की कोशिश कर रही थी। आशुतोष जी की बूढ़ी आंखें, जो समय और गिरती सेहत के साथ कमजोर हो गई थी, शायद माधव को पहचान नहीं सकी थी और राधिका का जवाब सुनकर वे खुशदिली से मुस्कुरा उठे। अरे बेटा, तो आप ही हैं जिन्होंने उस दिन राधु की मदद की,
जिनके कारण वो वक्त पर घर पहुंच सकी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। उनकी आवाज माधव के कानों में पड़ी तो उसने राधिका पर से निगाहें फेरते हुए उन्हें देखा और सौम्यता से मुस्कुरा दिया। नमस्ते अंकल, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, मैंने बस इंसानियत के नाते अपना फर्ज पूरा किया था। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं बेटा, अभी तो हम आपसे ठीक से मिले भी नहीं। आइए कुछ देर हमारे साथ बैठिए, कुछ बातें हो जाए। उन्होंने बड़े ही प्यार से उसे अंदर आने को कहा। माधव ने चोरी छिपे निगाहों से राधिका को देखा, जिसके चेहरे पर चिंता के भाव मौजूद थे, और बड़ी ही विनम्रता के साथ उनके आग्रह को ठुकरा दिया। माफ कीजिएगा अंकल जी, अभी एक जरूरी काम से जाना है तो रुक नहीं सकूंगा, कभी फुर्सत में आऊंगा तो आपके साथ आराम से बैठकर बातें करूंगा, अभी के लिए इजाजत दीजिए। उसका सहज व्यवहार और बड़ों के प्रति आदर सम्मान देखकर आशुतोष जी उससे खासा प्रभावित हुए। उन्होंने खुले दिल से उसे दोबारा आने का निमंत्रण भी दे दिया, जिसे अपने मन को रखने के लिए माधव ने मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया और उनसे इजाजत लेते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राधिका ने गहरी सांस छोड़ी और रसोई की ओर बढ़ी तो अर्पिता भी लपक कर उसके पीछे दौड़ गई। दीदी, ये तो वही थे ना? कौन कौन थे? राधिका उसकी बात का अर्थ समझते हुए अनजान बनते हुए सवाल किया और उसे नजरअंदाज करते हुए गैस पर चाय चढ़ाने लगी। अर्पिता ने उसका ये रिएक्शन देखा तो अपनी कमर पर हाथ रखे तनकर उसके सामने खड़ी हो गई और तुनकते हुए बोली, दीदी ज्यादा अनजान मत बनिए और सच सच बताइए, ये वही थे ना सबसे पहले जिनका रिश्ता आया था आपके लिए? होंगे, मुझे याद नहीं, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। एक बार फिर उसको नजरअंदाज करते हुए राधिका अपने काम में जुट गई। ये देखकर अर्पिता की भौहें तन गईं। बड़ी भोली बन रही हैं आप, पर मेरे सामने आपका ये पैंतरा काम नहीं करेगा, इसलिए नाटक छोड़िए और सच सच बताइए कि आप इनसे कब और कैसे मिली, उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ रहते हैं और वे हमारे घर पर क्या कर रहे थे।
राधिका ने ठंडी आ भरी और अब की बार उसकी ओर पलट गई। कितना ही अब वो इस सच्चाई से भाग ले, पर अर्पिता को शक हो चुका था और अब वो इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसके सवालों से भागना भी मुमकिन न था, क्योंकि आदत थी उसकी, जब तक बाल की खाल ना निकाल ले, अपनी जिज्ञासा शांत ना कर ले, पीछा नहीं छोड़ती। हाँ, ये वही थे, और जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अंजलि के पति के दोस्त हैं और उसकी शादी में ही इनसे मुलाकात हुई थी मेरी। इन्होंने उस दिन काफ़ी मदद की थी मेरी और काम से घर आए थे। अब अगर तुम्हारी तहकीकात खत्म हो गई हो तो मैं अपना काम कर लूँ? आधी अधूरी बात अर्पिता को बताने के बाद उसने ऐसा जाहिर किया जैसे उसके इन सवालों से वो इरिटेट हो गई हो। उसके उखड़े अंदाज और बिगड़ते तेवर को देखकर अर्पिता ने झट से सहमति में सर हिला दिया। राधिका ने गहरी सांस छोड़ी और वापस गैस की ओर पलट गई, पर अर्पिता वहां से एक इंच भी नहीं हिली। खामोश खड़ी कुछ देर इंतजार करती रही और जैसे ही लगा कि राधिका अब शांत हो गई है कि झट से अगला सवाल पूछ लिया, दीदी ये अभी तक सिंगल है, क्या कोई चांस है कि आपका टाका इनके साथ फिट हो जाए? अर्पिता ने जिस अंदाज में और जो बात कही, पल भर के लिए राधिका स्तब्ध रह गई। कहाँ उम्मीद थी उसे कि अर्पिता के खुराफाती दिमाग में ऐसा खतरनाक आइडिया भी आ सकता है। अगले ही पल उसने तीखी निगाहों से उसे घूरा और गुस्से में जबड़े भींच लिए। मार खाओगी अभी तुम, कैसे बकवास बातें करती हो, चलो निकलो यहां से। राधिका को उसका सवाल जरा भी रास नहीं आया था और उस पर भड़कते हुए उसने फटकार लगाते हुए उसे बाहर का रास्ता भी दिखा दिया था, पर अर्पिता पर उसके गुस्से का रत्ती भर असर नहीं हुआ। वो ढीठ बनी वहीं डटी रही। अरे पर जवाब तो दीजिए, अभी भी सिंगल हैं क्या वो? लो जी, यहां बहन गुस्से में फायर होने को तैयार थी और उसका सवाल नहीं छूट रहा था। राधिका ने अफसोस से सर हिलाया और खींचते हुए बोली, जी नहीं, शादी हो गई है उनकी और वो अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हैं, तो तुम्हारे दिमाग में जो खुराफाती आ रहा है उसे निकालकर बाहर फेंको, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। राधिका के जवाब ने तो जैसे अर्पिता के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। सारी एक्साइटमेंट एक लम्हे में फुस हो गई। उसने मुंह बना लिया और मन ही मन भुनभुनाते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद राधिका ने गहरी सांस छोड़ी। अनायास ही अर्पिता की कही बात जहन में कौन थी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। सीने में मौजूद दिल एकाएक जोरों से धड़क उठा। अगले ही पल राधिका ने खुद को अच्छे से झाड़ा और माधव का ख्याल अपने दिमाग से निकाल फेंका। क्रमशः